मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और अनयूजुअल से विषय पर बात करने जा रहा हूँ। अनयूजुअल यानी कि सामान्यतः जिस तरह के विषय के हम उम्मीद करते हैं, जब उस तरह के विषयों से हटकर किसी एक नए और काफ़ी कुछ आप यूँ कह लीजिए कि उत्पटांग से विषय पर बात की जाती है तो हम ये कहते हैं ये तो बड़ा अनयूजुअल सा सब्जेक्ट है। और दरअसल यह अनयूजुअल सा विषय मुझे आप लोगों में से ही किसी एक प्रिय युवा श्रोता ने दिया है। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मेल लिखा। उनका मेल था कि सर, जब हम प्रेम प्यार की बातें पढ़ते हैं, सिनेमा में देखते हैं पर्दे पर, तो वहाँ हमें हमेशा पानी दिखाई देता है। पानी, बरसात हो रही है और उस पर गाने गाए जा रहे हैं, छाता ओढ़ करके गाना गाया जा रहा है। तो क्या सर, ये जो इश्क है और ये जो पानी है, इसका कुछ आपस में रिश्ता है, कुछ संबंध है? तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा विषय उन्होंने उठाया है और शायद उनके हृदय के अनुकूल भी हो, और उनके हृदय के अनुकूल नहीं, ये सबके हृदय के अनुकूल होगा। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी भी होगी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज़ आई है, पता नहीं मैंने इसके बारे में आप लोगों से बात की है या नहीं की है, बारिशें। बारिशें उसके शुरुआत का जो म्यूज़िक है और जो गीत के बोल हैं और जो जिस तरीके से गाया गया है और फिल्माया गया है वो अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल शुरुआत में ही बारिशें, कभी आप उसे लगा करके देखिएगा, शुरू के 2-3 मिनट देख लीजिएगा। मतलब उसमें लव स्टोरी है और लव स्टोरी का बड़ा एक नया रूप दिया गया है। दोस्तों उसमें बारिश होती है और जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक गा रहे हैं और उसका संबंध प्रेम से है, तो वहाँ भी हम बारिश देखते हैं। सावन को आने दो और आया सावन झूम के और मोरे पिया नहीं आए, ढेर सारी बातें जो प्रेम के प्रसंग में लिखी गई हैं उनमें आपको हमेशा वर्षा मिलेगी, पानी मिलेगा, बादल मिलेंगे, गड़गड़ाती हुई बिजलियाँ मिलेंगी, चलती हुई हवाएं मिलेंगी, नदियां मिलेंगी, समुद्र का तट मिलेगा, बारिश। तो ये क्या है, आइए हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा साहित्य में जाना होगा। साहित्य में इसकी खूब चर्चा की गई है और जो साहित्य के स्टूडेंट हैं उन्हें ये बात बिल्कुल भी अटपटी सी नहीं लगेगी, बल्कि स्वाभाविक ही लगेगी कि ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही है। देखिए साहित्य में क्या बताया गया कि साहित्य में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, तो उसका पर्पज होता है कि हमारे अंदर जो स्थायी भाव हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं हैं, उन भावनाओं को कैसे जगाया जाए, साहित्य यही काम करता है, म्यूजिक भी यही काम करता है। तो साहित्यकारों ने बताया है या इसके जो समीक्षक हैं कि हमारे अंदर मूलतः 9 तरह के स्थायी भाव होते हैं, कुछ लोग इसे 10 भी मानते हैं, उसमें शांति के भाव को भी जोड़ दिया गया है। तो हम चलिए मान लेते हैं कि 10 तरह के स्थायी भाव होते हैं। ये स्थायी भाव क्या हैं? स्थायी भाव वे हैं जो हमेशा हमारे अंदर रहते ही रहते, स्थायी है ना, परमानेंट रहते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लगातार बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब उन्हें मौका मिलता है तो उसमें से कोई एक भाव बाहर आ जाता है, जैसे प्रेम है, क्रोध है, करुणा है, घृणा है, ये सब भाव स्थायी होते हैं। अब हमेशा तो हम प्रेम में नहीं भरे रहते, हमेशा तो हम क्रोधित नहीं होते, कोई गुस्से वाली बात हो गई तो क्रोध आ गया तो हमारे अंदर का जो स्थायी भाव है वो पैदा हो गया। अब वो दृश्य से भी हो सकता है, जीवन की घटना से भी हो सकता है, साहित्य पढ़ते समय भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये हमारे स्थायी भाव। इसके बाद जो दूसरे तरह के भाव होते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब है जो संचरण करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वो स्थायी रूप में मौजूद नहीं रहते, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे एक झील को ले लीजिए, तो झील में जो पानी है वो स्थायी है, लेकिन जो लहरें हैं जो संचरित हो रही है वो पानी स्थायी नहीं है, वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए उदास हो गए, थोड़ी देर के लिए आपके मन में चिंता का भाव आ गया, शंका का भाव आ गया, किसी चीज को लेकर के आप आशंकित हो गए, तो अब आप देखिए आया चला गया खत्म हो गया, फिर दूसरा तुरंत आया चला गया फिर खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये संचारी भाव कहलाते हैं, कहीं कहीं आपको ये व्यभिचारी भाव के नाम से भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो अगला है दोस्तों वह है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है कि बाहरी वातावरण में कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो स्थायी भाव हैं, हमारे जो संचारी भाव हैं, इनको वह उद्दीप्त कर देता है, इनको वह तेज कर देता है, इनको वह सपोर्ट करता है, या यूं कह लीजिए कि इन्हें वह बढ़ा देता है। जैसे प्रेम, अब प्रेम का जो प्रसंग चल रहा है तो मन में प्रेम की भावना उठी हुई है, ठीक है, मन में प्रेम की भावना उठी हुई है। अब ये जो बादल का गड़गड़ाना और पेड़ों का झूमना और पानी का बहना, बरसात का होना, ये बेसिकली हमारे अंदर जो रागात्मक प्रेम है, जो रोमांटिक लव की जो स्थायी की भावना पैदा हुई है, उसे वो उद्दीप्त कर देता है, उसे वह बढ़ा देता है। जैसे है ना कि आप चूल्हे का तो अब जमाना चला गया, तो चूल्हे में आग सुलगती रहती है लेकिन वो सुलग नहीं रही है, तो आप उसे फूंक मार करके उस आग को उद्दीप्त कर देते हैं तो वो तेज हो जाती है। तो बेसिकली ये जो इश्क है और इश्क के साथ जो पानी का रिश्ता है दोस्तों, वह एक स्थायी भाव का उद्दीपन के साथ का रिश्ता है। इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं, मैं नहा धोकर के पूजा करने जाऊं, मेरे कपड़े साफ सुथरे हों, फिर आप फूल चढ़ाते हैं, फिर आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो बेसिकली इसके जरिए आपके अंदर की जो भावना है, जो प्रेम की भावना, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना है, या ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा की भावना है, अपने उस भावना को सपोर्ट देने के लिए आप ये सब करते हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें एक अलग तरह की फीलिंग होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जो हम बाहरी वातावरण का निर्माण करते हैं, उसका उद्देश्य ही होता है कि हमारे अंदर जो स्थायी भाव हैं हम उनको सपोर्ट दे सकें, या इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम बढ़ा सकें। यह वैज्ञानिक शब्दावली है कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो पूरी ताकत के साथ बाहर आ सके, अपना काम कर सके। तो मित्रों, यही है इश्क और पानी का रिश्ता। मुझे लगता है कि इसके जरिए आपको एक नई बात पता लगी होगी। तो दोस्तों, अब आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।